ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ.
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 ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇ. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಮಹಾಪುರಾಣ ಪಾಠ ಷಷ್ಠ ಸ್ಕಂದ ಏಕಾದಶ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 4. ಅಲಂಕ್ತೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಾಯ ಪೂರ್ಣಕಾಮ ನಮಸ್ತುತೆ ಮಹಾವಿಭೂತಿಪತಯೇ ನಮಃ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧಯೇ. ಅಲಂತೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಾಯ ಪೂರ್ಣಕಾಮ ನಮಸ್ತುತೆ ಮಹಾವಿಭೂತಿಪತಯೇ ನಮಃ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧಯೇ. ಅಳಂತೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಾಯ ಪೂರ್ಣಕಾಮ ನಮಸ್ತುತೆ ಮಹಾವಿಭೂತಿಪತಯೇ ನಮಃ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧಯೇ. ಜಿಸ್ಕಿ ಕಾಮನಾ ಸದೈವ ಪೂರ್ಣ ಹೋತಿ ಹೇ ಹೇ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ನಮಃ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಸ್ತು ಹೋ ತೇ ತುಮಕೋ महाविभूतिपतये
महाविभूतिपतये
लक्ष्मी के पति
नमः
नमस्कार।
सकल सिद्धये
समस्त सिद्धियों के स्वामी को। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। तब वह भगवान की इस प्रकार से प्रार्थना करे, हे भगवान, आप समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है, किंतु मैं ऐश्वर्य की कामना नहीं करती हूँ। मैं आपको सहज भाव से सादर नमस्कार करती हूँ। आप उन संपत्ति की देवी लक्ष्मी देवी के पति और स्वामी है, और जो समस्त ऐश्वर्य से युक्त है, आप समस्त योग के स्वामी है। मैं आपको केवल नमस्कार करती हूँ। तात्पर्य, भक्त जानता है कि भगवान की प्रशंसा किस प्रकार की जानी चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। श्री भगवान परम पूर्ण है, अतः उनके समस्त उद्गम या उनके व्यवहार जगत पूर्ण से युक्त है। जो कुछ पूर्ण से उत्पन्न होता है वह भी स्वयं में पूर्ण होता है। क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, इसलिए उनसे अनेक पूर्ण इकाइयां उद्गत होने पर भी वे पूर्ण शेष बचे रहते हैं। इसलिए परमेश्वर की शरण में जाने की आवश्यकता होती है। भक्त की जो भी आवश्यकताएं होती है, पूर्ण श्री भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। तेषां नित्य विजुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्। इसलिए शुद्ध भक्त भगवान से किसी वस्तु की याचना नहीं करेगा, वह केवल उन्हें नमस्कार करता है। और भक्त द्वारा जो भी अर्पित किया जाता है, भले ही पत्रम पुष्पम फलम तोयम ही क्यों न हो, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। किसी बनावटी प्रयास को करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उत्तम ही होता कि सीधे सादे ढंग से जो भी प्राप्त हो सके उसे भगवान को आदर भाव से नमस्कार पूर्वक अर्पित किया जाए। भगवान अपने भक्तों के समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम है। ओम अज्ञानंतमिरांधस्य ज्ञानमंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नितंश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवत में आप ये जो प्रसंग पढ़ रहे हैं, पुंसवन व्रत की विधि, जो पुंसवन व्रत कश्यप मुनि ने अपने पत्नी दिति को बताए थे, क्या आवश्यकता थी, शायद आप पिछले अध्याय में पढ़े होंगे कि जब असुरों ने देवताओं के साथ युद्ध करके उनको निकाल दिए, उनके पोस्ट दखल कर लिए, और बेचारे रोते मरते भागते आए, तो देवताओं के माता अदिति उनको बड़ा दुख हुई। उन्होंने अपने पति कश्यप देव के पास आ करके याचना की कि मेरे पुत्र घर से निकाल दिए गए, असुर भी आपके पुत्र है और देवता भी आपके पुत्र है, तो आप कुछ व्यवस्था कीजिए, मेरे पुत्र अपने घर वापस आए। तो उनके इसे जेन्युइन प्रार्थना सुन करके कश्यप मुनि ने उनको प्रसन्न होकर कुछ उपाय बताए एक व्रत करने के लिए। इस व्रत का नाम था पयो व्रत। इस पयो व्रत विधि से प्रवत होती जी केवल 12 दिन का होता है। 12 दिन केवल पय माने दूध पी करके रहना 12 दिन। उसे कुछ और भी नियम होता है, विधान होता है, उसके अनुसार अगर 12 दिन करे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और अदिति माता ने उसको की 12 दिन में भगवान प्रसन्न होकर दर्शन दिए, उनके पुत्र बनकर गए। बामन देव हुए इस कारण से। बामन आकर के बलि से मांग करके लेकर राज्य दे दिए इंद्र, फिर उस दे। अब उसके बाद में तो उन लोग ने फंस के बोले ये क्या हुआ। फिर इंद्र ने फिर अपना पुष्ट ले लिया और उन्होंने दीति ने जो असुरों के माता थी, दैत्यों की माता थी दीति, आदित्यों की माता है अदिति, तो दीति भी अपने बच्चों को निकाल दिया। फिर उससे तो भी विशेष करके जा करके अपने पतियों के पास प्रार्थना की, कश्यप मुनि के पास मुझे भी कुछ बताइए, मुझे मदद कीजिए। तो अदिति की प्रार्थना से कश्यप मुनि ने उनको दूसरे एक व्रत बताते हैं, पुंसवन व्रत। ये थोड़ा उसे कठिन है। तो पुंसवन व्रत का विधि इस अध्याय में वर्णन हुआ है। उस मर्दगण का उत्पत्ति हो गए तो इसे कैसे व्रत करना चाहिए, इस श्लोक में ये बताते हैं। किसको केवल स्त्रियों को करना चाहिए, आप पहले पढ़े होंगे सुखदेव गोस्वाम ने कहते हैं स्त्री को चाहिए कि अघन मास नवंबर दिसंबर अभी चल रहा है इसी महीने में करना चाहिए। शुक्र पक्ष की प्रतिपदा को अपने पति की अनुमति से नैमितिक भक्ति को तप के व्रत सहित आरंभ करे। सबसे पहले सुखदेव गोस्वाम कहते कोई भी व्रत नियम कानून करे, पत्नी को अगर करना है सबसे पहले करना क्या चाहिए, पति की परमिशन लेना चाहिए, नहीं तो सारे बेकार हो जाएगा, है ना। तब मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। तब भगवान विष्णु की उपासना करने के पूर्व स्त्री को चाहिए कि वह मरुत के जन्म की कथा को सुने, मरुदगण की जन्म कथा सुने। यज्ञ ब्राह्मण के निर्देश अनुसार वह प्रातःकाल अपने दांत आदि साफ करे, नहाए, सफेद साड़ी पहने, राहु शरण धारण करे और फिर कलेवा करने के पूर्व भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा करे। लक्ष्मी की पूजा करने के लिए जो मंत्र है इसे बताया गया, अलंते निरपेक्ष निरपेक्षाय पूर्ण काम नमस्तुते महाविभूति पतये नमः सकल सिद्धये। इस मंत्र के द्वारा लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करे। अलंग मतलब पूर्ण, आप निरपेक्ष रूप से मेरा सारे मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे, आपको प्रणाम करता हूँ, आप महाविभूति पतये सकल सिद्धये, सकल सिद्धि देने वाले सब कुछ, इस प्रकार भगवान बोल करके प्रणाम करे। तो प्रभुपाद जी ने बोलते हैं कि भक्तों को भगवान को प्रणाम करने का विधि आता है। ओं पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमिदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, उनको अगर आप प्रसन्न करेंगे तो आपके सारे मनोइच्छा पूर्ण कर सकते हैं। भगवान के पास न जा करके हम और दूसरे दूसरे व्यक्ति के पास जाएंगे, हमारा आशा पूर्ण होगा कोई गारंटी नहीं, अगर होगा तो थोड़ा बहुत हो सकता है, बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग भगवान के पास नहीं जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि भगवान है वास्तविक पिता है। भगवान गीता में कहते हैं सर्वजोनिषु कौन्तेय अहं बीज पद प्रीता, जितने सारे प्राणी है जगत में संसार में सबका सीड बी गिविंग फादर, मैं असली बाप तो मैं हूं। आसंग ब्रह्म महद जोनि अहं बीज पद प्रीता, मैं ही असली पिता हूं। तो पिता का पुत्रों के साथ तो एक ममता के संबंध रहता है, स्नेह के संबंध रहता है, वो चाहता है उसके भलाई, है ना। नहीं कौन पिता है जो पुत्र का हित नहीं चाहता, जरूर चाहेगा। वो हितकारी पिता जो पुत्र के हित चाहता है, वो पुत्र के अपने मन से जो चाहेगा सो उनको पूरा नहीं करेगा। वो देखेगा ये चीज उनका हित में है या नहीं, मैं इसको देने से उसका अच्छा ही होगा या बुरा होगा। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ आपको, आपके बेटा है छोटा, उनके इतना समझता है नहीं, और ठंडी में उसका गला बैठा हुआ है, वो होता ना टंसिलेट ना, क्या बोलते हैं उसको, टंसिलेट गले में होता ना, हो चुका है, फ्रिज के पानी खूब पीता है, ठंडा मंडा खाता है, तो हो गया गले में। तो आप उसको डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर साहब बोले देखो उसको बिल्कुल ठंडा खाना बंद है, ना फ्रिज के पानी दो, कोई ठंडा चीज नहीं देने का, उनसे गर्म चीज दो, गर्म पानी गर्गलिंग करे, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, दवाई देता हूँ। तो आप आते हैं कि बच्चा ठीक हो जाए इसलिए व्यवस्था करते हैं, और 10 बजे उस दिन आपके घर के सामने आइसक्रीम वाला आया, आके बजाते ना, डिम 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 बजाया, और बच्चा तो आइसक्रीम के लिए बड़ा लालच है उसको, मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा, चिल्लाया रोया, आइसक्रीम वाला को क्या पड़ेगा। तो बजाते देखा कि बच्चा चाहता है, तो वहीं खड़ा रहा कि वो लेगा मेरा सगराख मिल जाएगा, और आप बोलते नहीं बिल्कुल नहीं, आप डॉक्टर मन क्या है, आपका गला खराब है, अब आइसक्रीम नहीं खाना है, उसको क्या पड़ा है। बहुत रिक्वेस्ट किया, नहीं मुझे आइसक्रीम दे दो या आज दे दो बाद में देखें, बोले ना बिल्कुल नहीं देंगे। वो बिगड़ गया, बोला देखो मेरे इतने शत्रु है, मेरे माँ बाप होकर मुझे 10 रुपये की मदद नहीं करते हैं, मैं कौन सा ज़्यादा भारी मांगता हूँ, 10 रुपये मांगता हूँ आइसक्रीम खाने के लिए, इतनी मुझे मदद नहीं करती, इतने निष्ठुर है ये, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और क्या करे, गुस्सा आकर जाएगा आइसक्रीम वाला, बोला अरे मेरे माँ पिता तो इसने मुझे बिल्कुल नहीं देते हैं 10 रुपये भी। तो आइसक्रीम वाला बोलेगा अच्छा तो चाहिए ना, मुझे बिल्कुल चाहिए यार, वो लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्या करूँ, मेरे शत्रु हैं, ना मैं काम करो चोरी करके ले आओ ना 10 रुपये, पीछे से आप पकड़ चुके उठा के ले आओ, मैं तो दे दूंगा, अच्छा दे देगा, अगर पैसा नहीं मिला तो कुछ भी सामान उठा के ले आओ ना 10-20 रुपये का, चावल हो गेहूँ हो कुछ ला के दे दो, मैं दे दूंगा। और वो ऐसे किया, असद उपाय से कुछ ला करके दिया और आइसक्रीम वाला दे दिया उसको। अब वो बच्चा समझेगा ये आइसक्रीम वाला अंकल इज सो नाइस, कितने अच्छा है, देखो मैं चाहता था मेरी इच्छा पूर्ण किया, मैं पैसा ही नहीं मिला चोरी करके ला, पैसा भी नहीं मिला तो दूसरे कुछ सामान दे दिया, फिर भी मुझे दे दिया, अब मेरे माँ बाप कैसा है यार, मुझे 10 रुपये नहीं दिया आइसक्रीम खा ले कि नहीं, क्या मुझे प्यार करते हैं, यही प्यार है, समझ गया ना केस क्या हो। अब आप बताइए आइसक्रीम वाला जो किया वो अच्छा किया ना उनके पिता जो किया अच्छा किया, हाँ क्यों, वो तो दिए नहीं बेचारे, बहुत रोया बच्चा, पिताजी जानते हैं इसमें उसका हित नहीं होगा, भले वो चाहता है नालायक बेसमझ है उसको समझ नहीं है, तो उसका जिसमें हित नहीं है उसको कभी नहीं करने देंगे, लेकिन आइसक्रीम वाला है उसको क्या पड़ी है, बच्चा मरे या बचे उनको क्या जाए, उनको तो पैसा चाहिए 10 रुपया, बोले तो चोरी करके ला, मांग कर ला या कोई सी प्रकार से ला, मैं तो तुझे आइसक्रीम देने से मेरा तो पैसा मिल जाए, मैं खत्म, तू मर, तुझे बीमारी है, मेरा क्या जाता है उसमें, और अनसमझ बचा उसमें प्रसन्न हो जाए, वाह देखो मुझे दे दिया, वो लोग नहीं दे रहे हैं, हम लोग जो बेवकूफ हैं सब ऐसे ही हैं, भगवान पास जाते हैं भगवान कभी कभी नहीं देते हैं, देने में तो बहुत देर करते हैं, नहीं देते, और दूसरे देवी देव पास काम बन जाए, बोले देखा कृष्ण के पास जाएंगे उल्टी सब खत्म हो जाएगा, धन संपत्ति छीन लेंगे तो ले लेंगे, उनका पास नहीं जाना चाहिए, वो देते भी नहीं और जो कुछ है उसको ले जाते, अरे देवी देवता के पास जाओ देखो लाल लाल बनते हैं, है ना, नहीं सब चकाचक रहते हैं, तो इसलिए देवी देवता क्यों है, वो तो आइसक्रीम वाले हैं, उनके पास है उनकी क्या पड़ी है, बोले भाई तुम मरो के जाओ, तुम हमारा क्या जाता है, तुम जाओ मेरे पीछा छोड़ो यार, मुझे अपना ऐसे कहावत है देवी देवताओं का काम है, हमको जोग दे दो हमसे भोग ले लो, मैंने आपके अंदर जो थोड़ी बहुत भक्ति भावना है वो हम ले लेंगे और आपको भोग दे देंगे, मरो जी कर, है ना, उनके क्या पड़ी है फिर, लेकिन भगवान वो हित कामी है, वो कभी भी आपका हित नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर, जिसे आपका माता पिता है आपका हित नहीं कर सकते, जिसमें आपका बुरा होगा वो नहीं करने देंगे। इस प्रकार भगवान कभी कभी कोई चीज देते हैं कभी चीज नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं कि भगवान नहीं दे सकते, ये जो देवी देवता लाते कहां से, गोडाउन तो वहीं से लाकर देते हैं। इसलिए भगवान कहते मूर्ख, जो देवताओं की पूजा करते हैं ये सब अल्प मेधसा है, कम बुद्धि वाले हैं, उनके पता नहीं ये जो थोड़े दिन के लिए उनको मिलता है कुछ, हम ये तो मेरे से लेकर देते हैं, उनको ये पता नहीं चलता वो लाएंगे कहां से। और ये अल्प बुद्धि वाले कामस्ते स्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अपने अपने इच्छा के मारे, कामना के मारे उनको बुद्धि खत्म हो चुका है, तो इसी के मारे भागते रहते हैं इधर इधर। अगर भगवान बोलते मेरे पास आए तो मैं नहीं दूंगा क्या, मैं ही सब देता हूं, मैं क्यों नहीं दूंगा। अकाम सर्व काम वा मुख्य काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगे न यजति पुरुषम परम, चाहे आपको बिल्कुल कोई काम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तभी भगवान को भजो, सब कुछ चाहिए दुनिया में तभी भजो, थोड़ा बहुत चाहिए तभी भजो, भगवान को भजन करो, हर प्रकार से आपको पालन पोषण करेंगे, यही केवल पालन करता है पोषण करता है। दुनिया में जो जगत सृष्टि किया गया, तीन डिपार्टमेंट भगवान ने तीन गुण अवतार लेकर के, ब्रह्मा जी को बोले थे आप क्रिएशन करो बनाओ, शिव जी को बोले आप मिटा देना, है ना, आप मेंटेनेंस का दायित्व स्वयं ली, जो स्वयं पालन करते हैं तो कर रहे हैं। अब भगवान का पालन ऐसे परफेक्ट है, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते, इस परफेक्ट अरेंजमेंट उन्होंने किए, हम लोग क्या मेंटेन करेंगे। हम लोग जो बच्चे बनकर के जन्म हुए थे, चाणक्य पंडित कहते हैं का चिंता मम जीवने यदि हरिर विश्वम्बरो गीयते, बोले फिर मैं कहा कि इतना सारी चिंता करता हूं क्यों, अरे जब हरि सब जगह बोलते हैं, सारे शास्त्र पुराण साधु लोग कहते हैं हरि ही पालन करता है पोषण करता है, फिर मेरा क्या ये सब चिंता करने का है, ना बोलने से थोड़ी हो जाएगा, तू तो कुछ नहीं करेगा काम बन जाएगा ना, अरे तो करते ही है, कैसे करते हैं, कोई प्रमाण है। तो चाणक्य जी कहते हैं नौ चौदर भक शिशु अर्थे कथम जननिंग स्तनंग निश्चरित, बोलते जी नवजात शिशु जब जन्म होता है, वो बच्चा पैदा होता है तो उसको तो रोटी दाल सब्जी तो खा नहीं सकता, और वो रोता है तो उनका माँ बाप को पता नहीं वो किस लिए भी रोता है, तो क्या देंगे, उनका पास भी क्या समर्थता है, वो क्या बेचारे क्या कर सकते हैं, वो भी नहीं कुछ कर सकते हैं, वो भी नहीं कुछ खा सकते, कुछ बोल भी नहीं सकता। इसी स्थिति में उनके लिए जो आवश्यकता है, जितने मात्रा में जो उसमें प्रोटीन जो इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, बिल्कुल बनावटी परफेक्टली बटल निपिल एग्जैक्ट जगह में फीड करके इसे बनाकर भगवान देते हैं, वो फिर बच्चे आने से पहले से व्यवस्था करते हैं एडवांस बुकिंग कि मैं एक भेज रहा हूँ वहाँ जाकर के रोएगा तो क्या खाएगा, उसके लिए मातृ के जो स्तन है, माँ के स्तन से दूध आता है, कभी हम लोग स्वयं दूध पान किए हैं ना, माँ सोचा कभी बच्चा सोचा कि भाई ये कैसे होता है, हम जो खाते हैं रोटी दाल सब्जी, स्त्री भी वही खाती है, तो उनका दूध कैसे बनता है हमारा कैसे नहीं बनता, इस बात को कोई सोचा। वो फिर जब ही बनता है जब आवश्यकता पड़ता है जितने दिन तक, फिर उसके बाद में नहीं, उससे पहले नहीं, कोई इस बात को नहीं सोचते। ये करते हैं भगवान ने, बोलते मैं एक प्राणी भेज रहा हूं तो इसके लिए तो पहले व्यवस्था करना पड़ेगा ना, कितने चिंता है, एडवांस बुकिंग करते हैं उन्होंने, व्यवस्था करते हैं, जब जन्म होने से पहले व्यवस्था करते हैं तो अभी नहीं करते हैं क्या, ना करेंगे नहीं, अवश्य करते हैं। इसलिए चाणक्य पंडित उपदेश देते हैं कि मैं इस बात को इत्यालोच्य मुहुर्मुहु हे जदुपति कमलापति, इसी बात को तो मैं बारंबार सोच रहा हूं, अरे मैं जन्म होने से पहले प्रभु मेरे लिए व्यवस्था किए, अभी नहीं करेंगे क्या, इस बात को सोच सोच करके मैं तो डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड किया, हे जदुपते कमलापते तब पादाम्बुज सेवने न सदा काल मया नियते, मैं मेरा जीवन का समस्त समय केवल आपके चरण सेवा के लिए लगा दूंगा, बस और कुछ नहीं, आप ही तो करते धरते हैं, मैं कहा कोई टेंशन, आप ही सब करते हैं, वो वास्तविक ही तथ्य है, वही करते हैं। तो इस प्रकार जो जान करके मान करके भगवान की सेवा में लगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं, सब देते हैं। उनको छोड़ करके हम अपने बलबूते पर करना चाहेंगे वो तो ऐसा ही है जैसे आपके पास एक टर्च है, बत्ती होता ना टर्च लाइट, तो उसमें बैटरी डाउन हो गया, टर्च सोचेगा अरे मैं बैटरी अपने आप जब डालना चाहेगा डाल सकता है, वो कभी डाल सकता है? ऐसे हम लोग का जब अपने आप प्रयास करेंगे ऐसा ही, जब तक उनका वो नहीं करेंगे तो वो कैसे हो सकता है? ऐसे बोल पूर्ण रूपेण भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए। वही महाविभूति पते सकल सिद्धये, सब कुछ वही करते हैं, लक्ष्मी के पति है, तो हमारा काम केवल क्या है? उनको प्रणाम करें, उनके प्रति पूर्ण भक्ति भाव रख करके उनको प्रणाम करें, अगर वो कुछ आदेश देते हैं तो उनको पालन करें, सेवा करें, जितने सामर्थ्यता और शक्ति उन्होंने दिए हैं उनको उनके लिए लगाए, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए, इसी से हमारे जीवन की सिद्धि होगा और इसी के लिए मनुष्य जन्म मिला है, क्योंकि बाकी सारे पशु पक्षी इतर प्राणी है इस बात को समझ नहीं सकते, वो तो खाएंगे पिएंगे सोएंगे मरेंगे बस, उनके दिमाग में और कुछ आ ही नहीं सकता, ये समझदारी उनके अंदर नहीं दिया गया, ये समझदारी केवल मनुष्य में भगवान ने दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि मनुष्य इसको सोचे विचारे और इसे काम करे, इसके लिए मनुष्य की बुद्धि दिया गया, और हम उसी बुद्धि को लेकर के जो पशु काम करते हैं खाना पीना झगड़ना, हम वही काम करते हैं। भगवान बोले देखो मैं ये फैसिलिटी उनको दिया तो फिर भी बदमा सही काम कर रहा है, कंपनी से आपको एक गाड़ी मिला एक फ्लैट मिला, जो मिलता तो कोई विशेष काम करने के लिए मिलता ना, यूज करने के लिए कंपनी का काम, वो आप उसको लेकर के अपना घर में रख करके पेंडिंग शेंडिंग करके बढ़िया अपना एक्शन कर रहे हैं, कुछ वो काम नहीं करेंगे तो देगा फिर आप ले जाओ, बोला बदमा साहब यूजलेस है, सिर्फ इस काम के लिए तू कर नहीं सकता। तो भगवान हमको मनुष्य शरीर दिमाग बुद्धि जो दिए हम अगर उसको पशु की तरह लगाए खाने पीने झगड़ने में भगवान बोले यूजलेस, यू आर नॉट फिट, फिर नहीं देंगे, ये चांस फिर हमारे हाथ से गया, फिर नहीं मिल सकता, फिर तो इस सब जोनी में आ जाएंगे पशु प्राणी की जोनी में, और फिर दुखी दुखी भक्त रहे। तो इसलिए इस मनुष्य शरीर में कम इतना समझ लेना चाहिए कि इसका उद्देश्य ही है जीवस्य तत्व जिज्ञासा, और जान करके भगवान की भक्ति भगवान की सेवा करना चाहिए। भगवान की सेवा बोले भगवान तो हम कुछ बताए नहीं, हम देखे नहीं, हम कौन सा सेवा करेंगे, हमको अगर बताएं तो हम कुछ उनके लिए करें, अरे बताया नहीं तुझे किसे पता चला, उनके वो जो बताया आपके जानने के ना मुझे बताया नहीं तो आपका घर में आप बताएंगे कि आपका नौकर है क्या हो, उन्होंने पूरा ब्रह्मांड को रचना किए, रचना करके उसमें नियम दे दिए कि क्या करना चाहिए क्या ना चाहिए, जैसे कोई आप मोबाइल फोन भी आप खरीदने जाते हैं बाजार में उसके साथ में एक छोटा सा पेपर आता ना गाइड बुक, क्या बोलते हैं यूजर गाइड मैनुअल आता ना, मैनुअल आप नहीं पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि भाई को ऐसे करना है इसको पानी में डालना है ये करना, अब पढ़ने बोले ये क्या होगा, मतलब मोबाइल यूज करना है पेपर फेंक दिए, तो बोले मोबाइल थोड़ा गंदा हो गया ऐसा करते हैं साफ करते हैं, वॉशिंग मशीन में डाले सर्फ डाल के देखो सब साफ करेंगे, साफ करेंगे तो साफ करेंगे निकालेंगे तो ऊपर नीचे सब पानी पानी निकलेगा बोले ऐसा कैसे हो गया, कंप्लेन करेंगे अरे अब मैं साफ कर रहा था ये पानी क्यों हो गया, बोलेंगे हम बुकलेट दिए थे ना पढ़ने के लिए ना, मैं तो फेंक दिया ना फेंक दिया था, हम क्या करें उसको पढ़ना चाहिए, इसे लिखा था कैसे उसकी इस्तेमाल करना चाहिए। तो भगवान ने जब दुनिया बनाया हम लोग को बनाए इस जाने के लिए, तो हमारे साथ बुकलेट भी दिए हैं कि इस दुनिया में कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट को सीखना चाहिए, ये जो बुकलेट है ये भगवद्गीता है, भगवान ने स्वयं आकर के दिए, वो भी हमने नहीं बनाए, जब से सृष्टि बना तब से बना के दिए। आप बोलेंगे नहीं ये तो कुरुक्षेत्र युद्ध में बोले थे, अरे नहीं आप गीता में देखो कुरुक्षेत्र युद्ध तो दोबारा रिपीट किए उसको, हम हुड़बक भूल गए थे करके, लेकिन बोले तो कई करोड़ साल पहले इसी में लिखा गया बात, तो भगवान ने बुकलेट दिए हैं तो उसी को पढ़ करके हम कैसे इस जीवन को व्यतीत करें, कैसे वार्ताप करें, कैसे आचरण करें, ये सारे नियम कानून उसे सीखना चाहिए, फिर इसके अनुसार काम करो तो ठीक यूज होगा, नहीं तो मिस यूज हो जाएंगे, है ना। तो भगवान ने इसमें लिखे हैं कि इस संसार में आप बोलेंगे नहीं, ये भगवान ने इसमें लिखे हैं ये करो, उसमें क्या पड़ी, हमारे लिए क्या आदेश है। अरे भाई क्या आदेश है, जब भी आपको किसी ने कोई मदद कर रहा है खाने में सोने में, आपको ले आता है तो आपके लिए आप उनके लिए एहसान मानेंगे ना कि आप मुझे बहुत मदद करते हैं, नहीं तो मैं परेशानी में पड़ जाता, पता नहीं मुझे कोई काम नहीं, आपने मुझे ये काम दिए इसे दिए, मुझे मेंटेन कर रहे हैं, हर प्रकार से मदद करते हैं, वो थोड़ा बहुत कोई मदद कर देता है हमारे लिए एहसान मानते हैं। यहाँ तक तो हमारे समाज में नियम है ना, जैसे सब बंधु वर्ग होते हैं, किसका घर में कोई शादी हुआ तो आप लेकर के उनके घर में एक साड़ी या कुछ इसे दिए, 100 रुपया 200 रुपया दिए, तो आपके घर में होगा तो वो 210 रुपया देगा आपको, 10 रुपया ज़्यादा देगा, कम नहीं दे सकते, यही है ना प्रथा, मिनिमम इतना दे, वो नहीं दिया तो आप नहीं देंगे, अगर वो दिया तो आप तो कम से कम 1-2 रुपया ज़्यादा देकर देंगे, यही तो है ना नीति। तो अगर किसी ने आपको कुछ सहायता करता है कुछ देता है तो आप एटलीस्ट नहीं दे पाते तो कम से कम एहसान तो माने उनको, अगर ऐसा ना करे तो आपको क्या कहा जाएगा, कृतज्ञ बेईमान कहा जाएगा, अरे यार कैसे आ गया, मैं इसको हर पग मदद किया इतने भी नहीं कर पाता, मुझे कम से कम नहीं दे पाएगा बोलो तो सर मैं माफ करे मुझे आपने, इतना तो करना चाहिए। हम लोग तो आजकल कई कई लोग बोलते हैं कि भाई हम तो ये हरे कृष्ण करने से क्या होगा, इसमें क्या होता, किसी को बुरा ना मानो, किसी की बुरा मत करो, अच्छा से ईमानदारी से जियो और ढंग से परोपकार करो तो इसी से कल्याण, किसी की मदद नहीं कुछ नहीं, जब देखो पैसा इकट्ठा करे हरे कृष्ण करे इसमें क्या होगा। कई शिक्षित लोग आधुनिक जगत में ऐसा ही कहते हैं, तो उनको अगर पूछो भाई ईमानदारी का मतलब क्या होता है, ईमानदार किसको कहते हैं, वो भी यही बात कहेगा कि हाँ ईमानदार मतलब मैं इलेक्ट्रिक मीटर लगाया हूँ, कभी चोरी नहीं करता हूँ, जितने मीटर बकाया था कोई जो क्या बोलते हैं स्टिक फिक नहीं लगाता हूँ, जो बकाया वो देता हूँ, मेरे टैक्स कभी मैंने चोरी नहीं करता हूँ, जो होता है वो टाइम पर पेमेंट करता हूँ, ये मेरा मंदिर टाइम पर जो करना है जो देना है उसको टाइम पर देता हूँ, जो नहीं देना है नहीं देता हूँ, इतना मेरा पास दे है टाइम देता हूँ, कभी इसमें कपट की चोरी नहीं करता हूँ, ये मेरा अनेस्टी है, इसी मानता ना अनेस्टी में ईमानदार हूँ। एक इलेक्ट्रिक का बिल दे करके अपने आपको अनेस्टी मानते हैं, उसको चोरी छापा नहीं करते हैं। ये इलेक्ट्रिक तो अभी हम देख रहे हैं कि शाम को भी जाता है, सुबह भी जाता है, दोपहर में भी जाता है, दिन भर भी कभी नहीं रहता। अरे वो जाता तो दूर बात है, उसको लगाने के लिए कितने बल्ब लाइट खरीदते हैं, वायरिंग करते हैं, कितना पैसा खर्चा करते हैं, और इतने बार जाता रहता है, तंग करता रहता है, फिर भी महीना में बिल आ जाता है नहीं देने से, आपके ऊपर फिर कैसे हो। अब ये इलेक्ट्रिक लाया आप कब से पैसा खर्चा करके, ज्यादा से ज्यादा 10-20 साल से लाया, वो इसमें इतनी तंग करता है फिर भी अपने बिल देना पड़ता है, ये लाइट 2-4 घंटा इस्तेमाल करते हैं इसमें। अब देखिए उनको इतना एहसान मानते हैं दे करके, हो ईमानदार टाइम पर पूरा पक्का बिल दे देता हूँ, कभी मैं चोरी नहीं करता हूँ, कभी बकाया नहीं रखता हूँ, ये मेरे अनष्टी में ईमानदारी। अरे भैया तेरे जन्म होने से पहले, तेरे जन्म होने से पहले, तेरे बाप के जन्म होने से पहले, उनके बाप की, उनके बाप की, उनके बाप के जन्म होने से पहले एक लाइट की व्यवस्था किया गया था और अभी तक एक बार भी फ्यूज नहीं हुआ, ना कि लोड सेटिंग क्या बोलते हैं करंट चला जाए, ऐसा नहीं हुआ कभी भी, कभी नहीं हुआ, उनका बिल अब आया नहीं, अगर आया तो देगा है ना। और उस लाइट उस बल्ब के बिना ये लाइट तो कुछ काम नहीं करते, एक बल्ब भगवान लगाए है ना, नहीं जिसको हम सूरज करके कहते हैं, एक ही बल्ब फिट किए किसी जगह में, किसी होल्डर से फिट किए, अब संसार में कहीं भी जावा जाए आपको बोलेंगे हमारे पास आई ओनली वन लाइट, हमें छोटा सा हाल में देखो 5-6 लगा रखे हैं, एक कुछ फीट से कुछ फीट एरिया के अंदर 6 लाइट लगाए वो भी फिट नहीं बैठता, तो भगवान ने पूरे विश्व ब्रह्मांड में एक ही बल्ब डाल दिया, एक ही बल्ब फिट किए जो कभी फ्यूज नहीं होता है, कभी लाइन जाता है उसका नेवर। और कितने दिन से होता है वो व्यवस्था, किसने किया, किसके बाप ने किया, ना किसी फैक्ट्री वाले ने किया। वो लाइट लेकर के चलता है, उसका बिल के बारे में कोई सोचा? ठीक, छोड़ो, लाइट के बिल के बारे में नहीं सोचता। जिस धरती में रहता है ये किसका है, किसका है, कोई बोल सकता किसका है? हम बोले नहीं, मैं खरीदा, मेरा नाम शेल्डिड है। अरे तेरे नाम शेल्डिड है, 200 साल पहले तेरा था ना, 50 साल बाद तेरा रहेगा। तो पेपर बना कर अपना बना लिया, अब पता नहीं उसके अंदर क्या है, उसमें क्या चीज है, कुछ भी नहीं पता है। भगवान कहते हैं जत आदित्य गत तेजं जगत भासे ते अखिलम, जत चंद्रमसि जत चाग्नो तत तेजो विधि मामकम। आदित्य में, सूर्य में जो तेज है, सारे जगत को जो लाइट देता है जो सूर्य, उसके तेज में ही उसके अंदर फिट कर दिया, मैं दे रहा हूं। जद आदित्य गतन तेजम जगत भासे ते अखिलम, अखिल जगत को जो आलोकित कर रहा है उस तेज कहां से आया, मैंने दिया। जत चंद्रमसि, ये तो ये लाइट है, ठंडा लाइट चंद्रमा में, उसको भी कौन दिया, उसको भी मैंने दिया। जत चंद्रमसि जत च अग्नो, ये जो अग्नि आग अब जलाते हैं, इसी आग के अंदर ये जो हीट एंड लाइट, वो कौन कैसे आया, बोले मैंने दिया उसके अंदर, मैं फिट किया उसको। जत चंद्रमसि जत चाग्न तत् तेजम विद्धि मामेकम, भगवान तो मैं ही किया हूं, मुझे जानो इस बात को, मैं बता रहा हूं आपको, और कौन बता है, कोई माइकल छाती हाथ हाथ लेकर कह सकता है मैंने इसे क्या करके? एक ही व्यक्ति है वो कृष्ण है, वो कहते मैंने किया। सूरज में, चांदनी में, प्रत्येक आग में, ये जो सब एनर्जी, सब लाइट हीट मैंने दिया। गामा विश्वच भूतानी धारयामी अहम ओजसा, पुष्णामी च औषधि सर्वा सोम भूतवार सात्मक। बोली गाम मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर मैंने प्रवेश किया, इसी कारण से तू पृथ्वी के अंदर टीका है, नहीं तो वो तो कहां गया होता, एक बार थोड़ा हिल जाता तो तू बोलते हो ये यात को हो गया, क्या हो गया, 2-4 सेकंड में हाल खराब हो जाता रहा। लेकिन तू इतने काल से, कितने पूर्व पुरुष से बच रहा है, कैसे? क्योंकि मैं उसमें टिकाया हूं, मैं उसके अंदर प्रवेश करके उसको धारण किया हूं। गाम आविश्य च भूतानी धारयामी, मैं धारण किया हूं, मेरे शक्ति से मैं धारण करके रखा हूं, इसलिए हजारों साल से तू अपना बाल बच्चे लेकर आराम से रह रहा है। अगर मैं धारण नहीं किया तो तेरा सत्ता ही लोप हो जाता। गाम आविश्य च भूतानी धारयामी अहम ओजसा, केवल इतने भी नहीं, लाइट नहीं दिया, धरती भी नहीं दिया, पुष्णामी च औषधि सर्वा सोम हुतार सत्व चंद्रमा बन करके जितने वनस्पति हैं, फूल पत्ते पौधे फल सब्जी, उसके अंदर जो रस होता है वो भी कैसे आया, बोले मैं ही करता हूं। इसको फूल में कलर डालना, रंग देना, रस देना, फल में अपने अपने जो फल सब्जियों में जो चीजें देना, कौन करता? कभी हम लोग एक दाना गेहूं भूमि में डालते हैं, 2.5 महीना के अंदर वो 100 ग्राम बनकर आता है, 100 दाना बनकर आता है ना? नहीं कभी हम सोचे भाई कैसे होता है? कोई वैज्ञानिक कभी तक ये बात को सोचा कभी? एक डालते दाना वो 2-2.5 महीने में 100 दाना बनकर हो जाता है, कैसे बनता है? इसी बात को कोई नहीं सोचता। भगवान मूर्ति मैं करवाता हूं, मैं करता हूं, और कौन करता? हमेशा एक्टिवेट रहता हूं, मुझे करता। बोलते हैं कि इस प्रकार सब्जी भी देता हूं, पानी देता हूं, धरती देता हूं, लाइट देता हूं, केवल इतना नहीं सब्जी नहीं देता हूं। बोले क्या? बोले अहंग वैश्वान और भूतवा। बोले तू जब खाता है, खाने के बाद पचाता भी कौन है? उसका तो मैं ही पचाता हूं। वैश्वान अग्नि बंद करके अब पेट के अंदर जाके घुस करके उसको भी हेल्प करता हूं डाइजेशन में। अहंग वैश्वान और भूतवा प्राणिनांग देहम आश्रित, देह प्राणियों के देह के अंदर जा करके पचामी अन्नम चतुर्विधम, पचाने का काम भी मैंने कर रहा हूं। बोली सारे अंदर से बाहर से ऊपर से सब मैं कर रहा हूं, आप मुझे आकर थोड़ा के प्रणाम करने के लिए नहीं मन कर रहा है, और इलेक्ट्रिक बिल जो 50 बार कट जाए तो देखकर बोलते हैं आई एम ईमानदार में अनेस्ट बेवकूफ कहीं के नंबर वन बेईमान नहीं हम लोग सब, ऐसे अगर समझे। अरे जे न जाने कितने कालों से इसे तुझे दे रहे दे रहे देते ही रहे, अभी तुझे मांगे नहीं कुछ, मुझे कुछ दे दो, एक बार बिल नहीं भेजे। अगर बकेया बिल तो तू दे नहीं सकता, अगर इसी जन्म का बिल दे दे तो दे सकता है? हाँ जोड़ दो कि मैं नहीं दे सकता हूं। आप कभी कभी हम वो तो पूछे नहीं ना, पूछते हम दे देते हमको, अच्छा तो दे देते हमको, वो पूछे नहीं, पता क्या था उनको क्या चाहिए। इस बुकलेट में भगवान ने कहते हैं कि मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तू क्या मुझे दे सकता है बेवकूफ। लेकिन ना सर कुछ नहीं चाहिए, ना कुछ चाहिए, क्या चाहिए मुझे, चार चीज दो, ये मेरा बिल है। भगवान बिल देते हैं, क्या बिल मालूम है? मन मना भव, मद भक्त भव, मद याजी मद नमस्कुरु, ये चार उनका बिल है। बोलते हैं ये चार चीज मुझे दीजिए, कम से कम मन मुझे दीजिए, मेरा भक्त बनिए, मुझे पूजा कीजिए, मुझे प्रणाम कीजिए, बस बाकी मैं तुझे कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ, करते ही रहूंगा, तुझे तेरे जितने आएंगे जेनरेशन सबको करते रहूंगा, मुझे तू इतना कर। नहीं उनको क्यों करो, वो तो शून्य है, उनका हाथ पर नहीं कुछ नहीं, वो क्या है? अरे ये हमारे महादुर्बुद्धि है, तो एटलीस्ट इतना करना चाहिए। क्योंकि सब कुछ वो महाविभूति पते है, सारे सिद्धि उनके पास होता है, और जो कुछ कामना सब कुछ वही पूर्ण कर सकते हैं। अगर हम उनका पास जाकर जांचना करते हैं तो ही हमारा वास्तविक बुद्धि का सदुपयोग है, वही कर्म का कुशलता है। उनको छोड़ करके दूसरे पास जाएं कुछ करें, ये सब हमारा बेवकूफी है, उसमें कुछ नहीं होगा। तो भगवान हमेशा कहते हैं तुम मेरे मन लगा करके मेरे सेवा करते रहो, तेरा ये जीवन निश्चित रूप से कल्याण होगा, सफल होगा। इसी चीज को बताने के लिए लोग पढ़ते नहीं, समझते नहीं बुकलेट को, वो आकर इसे रहना चाहते हैं दुनिया में। 99% लोग उसको जानना नहीं चाहते, मूर्ख होना चाहते। तो इसलिए भगवान ने बोलते हैं क्या करूं मेरे बेटे, तो इतने महामूर्ख है, कोई जानना भी नहीं चाहते हैं, बदमाश किस दिशा में जाए। एक कभी कभी आप ट्रेन में सफर करते होंगे, आपके बर्थ के पास में कोई बैठा होगा, आप कहते भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं, आप बोलते हैं पता नहीं, अरे पता नहीं, ना नहीं ट्रेन जा रहे सब लोग जा रहे, मैं जा रहा हूँ, कहाँ उतरेंगे पता नहीं, जहाँ ट्रेन रुकेगा सब उतरेंगे, मैं उतरूंगा। तो ऐसा उत्तर सुनकर क्या सोचेगा, क्यों पागल ही, सही बात है ना। अगर आप लोग अभी जीवन यात्रा में स्वभाव चल रहे हैं, आधा 20-25 साल 50 साल जर्नी कर चुके हैं, अगर आपको कोई पूछे भैया सही बताओ क्यों जी रहे हैं आपने, ये प्रश्न को करें आप, क्यों व्हाई आर यू लिविंग, क्यों जी रहे हैं आपने, क्या उत्तर है आपके पास, कुछ उत्तर है, सब जी रहे हैं हम जी रहे, ऐसा है ना सेम, उस पागलपन नहीं कहा जाएगा, थोक में हम सभी पागल ही है, हम पता नहीं है क्यों जी रहे हैं, कब तक जिएंगे पता नहीं, अरे पता नहीं तो जा रहा है, आधा तक आ चुके तो पता नहीं कहां जा रहा है, किस लिए जा रहा है, कोरा पागलपन है सब, है ना, हमें पता नहीं हम किस लिए जी रहे हैं, कब तक जिएंगे पता नहीं। इसलिए भगवान इस मूढ़पन को देख करके आपने आदमी कुछ भेज रहे हैं, कुछ संत, कुछ शास्त्र, कुछ साधु, कुछ ऐसे देकर भेजते हैं कि जाओ कम से कम सिखाओ जा करके, कुछ तो मदद करो, कुछ तो पता चले उनको, ऐसे बेवकूफ से कैसे चलेंगे, सब पशु बनने आएंगे सारे, पशु भी बनने के लायक नहीं है, क्या बनेंगे पता नहीं। एक व्यक्ति तो बता रहे थे, बोले आजकल पशु लोग अच्छे अच्छे कई जोनी के पशु तो चिड़ियाखाना में देखने नहीं मिलता, जंगल में कहीं दिखने नहीं मिलते, खत्म हो गए सब, क्योंकि हमारा जो इवोल्यूशन थ्योरी है जो प्राणियों का, वो सब प्रमोशन होते हैं, सब प्रमोशन होते रहते हैं, जलचर से लेकर के जो पक्षी है पशु है सब, जो पशु पक्षी मरने के बाद फिर वो नहीं, उनका दूसरे जन्म मिलेगा, प्रमोशन होता है सब। केवल मनुष्य एक स्थिति है यहाँ पर प्रमोशन नहीं, यहाँ पर आपको चेक किया जाएगा, बाकी सब से एक तरफ है बढ़ते जाएंगे। वो लोग तो सब मरते मर के प्रमोशन होकर आते हैं, मनुष्य बनते हैं, ये सब बनते 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 कई लाख जोनी पास करने के बाद मनुष्य जोनी पर आते हैं। मनुष्य जोनी में आप ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, साइड में जा सकते हैं, इस साइड में जा कहीं जा सकते हैं, ये चौराही है, बाकी सब वन वे ट्रैफिक है। पशु जोनी से मनुष्य जोनी से वन वे ट्रैफिक, वहाँ तो कोई सोचना नहीं, पाप पुण्य होता ही नहीं, वहाँ कर्म होता ही नहीं, वहाँ वहाँ तो बस खाओ पियो मरो फिर आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चले जाओ। यहाँ आ करके चेक किया चोरा है, अभी कहाँ जाओ डिसाइड करो, लेकिन यहाँ भी आपको डिसाइड नहीं कि वही धनु से भी बढ़े तो फिर बैक टू स्क्वायर फिर उसमें चले जाए, है ना। तो मनुष्य जोनि प्राप्त करके अगर हम ये विचार नहीं कर पाए कि जीवन के उद्देश्य क्या है, तो ये हमारे सबसे बड़ी असफलता, सबसे बड़ी चांस खो गया आपने हाथ से। प्रभुपाद जी ने एक किताब लिखते बोलते सेकंड चांस, दूसरा अवसर, एक अवसर तो खो चुका था, ये दूसरा अवसर तुझे मिला उसको भी खो रहा है तूने, मूर्ख उसको कम से कम खो मत। इसलिए उन्होंने भगवान की जो वाणी है, जो बुकलेट है संसार के लिए, कैसे इसमें जीना, किस लिए जीना, क्या करना, ये जो सब गाइडलाइन उसमें लिखा गया है मैनुअल में, वो भगवद गीता को विशेष करके हमारे संस्था में अभी दो दिन पहले गीता जी की प्राकट्य तिथि गया, तो आचार्य ने हमारे प्रभुपाद जी ने से व्यवस्था किए हैं कि इसी बुकलेट को संसार में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिया जाए और रिक्वेस्ट किया जाए, भाई पढ़ो, थोड़ा एक दो पन्ना तो पढ़ लो, थोड़ा तो पता चले आपको, कम से कम आपके पास तो बुकलेट तो रखो, अभी नहीं पढ़ेंगे कभी जरूरत पड़े, कभी तकलीफ में आए तब तो पढ़ो, लेकिन है ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या, पेपर पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे, कचड़ा, और दूसरे को डिटेक्टिव बुक क्या क्या होता ना ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे जो होते नहीं। तो प्रोफ्यूजली सभी का पास से पहुंचाओ ताकि कभी हाथ में आ जाए, भाई मिस्टेक कोई पढ़ ले तभी उनका कल्याण हो जाए, जानबूझकर इच्छा से न हो, गलती से हाथ में आ जाए या क्या है थोड़ा देख लो टाइम पास करके, हाथ में होगा तभी ना। तो इसलिए प्रचुर मात्रा में इस बुकलेट को वितरण किया जाए, इस व्यवस्था के लिए जितने भगवान के हैं, भगवान आपने मानते हैं, हम भगवान आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, हम आपके हैं, आपकी कृपा चाहते हैं, तो कृपा जाए तो मेरे लिए कुछ करो, नहीं तो बोलेंगे सर मैं तो आपका हूँ, मैं आपका ही कृपा पे बना, नहीं एक गिलास पानी ले, नहीं पानी तो नहीं ला सकता हूँ लेकिन मैं आपका ही हूँ आपका, अरे वाह तो मुझे क्या सेवा करा, मुझे चाय बना, नहीं 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 मैं नहीं ला सकता आपका, और किसी को बोलते क्यों नहीं, मुझे क्यों बोलते, ये कोई सेवा होता ऐसा अगर कोई कहे कि गुरुजी मैं तो आपके एकांत आश्रित हूँ मुझे कृपा कीजिए, अरे भैया प्यास लगते पानी लो, मुझे क्यों बोलते आप, दूसरे को बोलो ना, नहीं ले सकता है आपको, आया कृपा मांग लो मुझे पानी मांग रहे, अब ऐसा हम करेंगे है ना नहीं। तो इसलिए आपने आप हमको डिसाइड करना चाहिए अगर हम अपने कल्याण चाहते हैं, कुछ ईमानदारी से भगवान की कुछ सेवा करना चाहिए, भगवान से हम सब कुछ लिए, क्या नहीं दिए हमको उन्होंने और हमसे चाहते क्या है, थोड़ा मुझे प्रणाम करो, मुझे मानो और दूसरे को बताओ मेरे बारे में, मेरे पार्टी के लोग बन जाओ, तो भगवान के पार्टी के बने करके भगवान के काम जो है उनके वाणी जो है सबको लेकर के प्रयास करें, वो भी नहीं होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कम से कम वी शुड डू आवर ड्यूटी ना, अपना कर्तव्य तो करें, प्रयास तो करें, प्रयास करने के लिए मन में एक विचार संकल्प तो करें, इतना भी नहीं करेंगे तो कैसे हमारा चाहेंगे कि हमारा कुछ हित होगा। तो जितने भी अब छोटे 10-15 लोग जुड़े हुए हैं ये अमृतसर के ये छोटा सेंटर में, तो आप लोग का भी मन में इस प्रकार के संकल्प होना चाहिए कि अगर हम इसे बनते हैं केवल आकर के थोड़ा मुंह दिखा कर मथा ठोक कर चले जाएं, इसमें काम नहीं बनने वाला। ये मथा ठोकने किस लिए आता हूँ कि देखेंगे प्रभु जी वो आए थे बस गए, और कब के प्रसाद मिल जाए, मैं आता हूँ मुझे क्यों प्रसाद नहीं देते, वो भी फायदा ढूंढने के लिए बुलाता हूँ, इसके लिए नहीं। कुछ चाहे बिना कुछ उनके लिए करने के लिए चाहो, क्या कर सकते हैं, सब तो वो करा रहे हैं, शक्ति दिए उन्होंने, बुद्धि दिए उन्होंने, सामर्थ्य उन्होंने दिए, सब कुछ उन्होंने दिए, तो उन वो चाहते हैं कि मेरे ये काम करो, सबको लाके थोड़ा बताओ कि उनके कल्याण के कुछ तो प्रयास करो। भगवान कहते हैं कि अगर इस काम को ऐसा कोई कर रहा है श्रद्धा से तो मेरा ये बहुत प्रिय होता है, तो भगवान के प्रिय बनने के लिए प्रयास तो करना चाहिए ना। तो जितने हो सके 24 घंटा हमको मिला है उसमें आपने लिए कितना करते हैं, ठाकुर जी के लिए कितना करना चाहिए जो हमको सब कुछ देते हैं, ये समय भी उन्होंने दिए हैं, 24 आवर्स दिन रात मिलाकर जो सैंक्शन उन्होंने किए हैं, वो चाहे तो उसको कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी दे सकते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं। अगर पूछा जाए हमारा सामाजिक नीति है, कोई आपको आपके काम में 100 रुपया दिया, आप भी उनको 100 रुपया देना चाहिए, और वो आपको तो 100 रुपया नहीं जो कुछ है सब कुछ दिए हैं, अब उनका काम पड़ा गीता जयंती के समय, आप उनके लिए क्या करते हैं। जो आपको जीवन पर्यंत, शरीर पर्यंत, सामर्थ्य शक्ति पर्यंत दिए हैं, तो उनके लिए आप क्या करते हैं, कुछ नहीं, कुछ तो करना चाहिए ना। तो इसलिए जब तक हम कुछ संकल्पबद्ध हो करके, कुछ मन में विचार करके, नहीं मैं कुछ आपके लिए करूंगा, किस प्रकार करूंगा, शरीर से, मन से, वाणी से, मेरे पास वही 3 है, काय मन वाक्य, इसके द्वारा कुछ करूंगा। शरीर के द्वारा आपके कुछ शारीरिक सेवा, मंदिर साफ कर दूंगा, जा करके कुछ गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रयास करूंगा, कुछ करूंगा आपके लिए, कुछ भेंट इकट्ठा करूंगा, वाणी से आपके बात दूसरे को बताऊंगा, आपका नाम उच्चारण करूंगा, आपके कीर्तन करूंगा, मन में आपके बारे में सोचूंगा, किसे आप किसी। अगर ये 3 काम थोड़े बहुत घंटे 2 घंटा की आधा घंटा कुछ करें तो चलो इतना तो मेरे लिए कम से कम कर रहा है। उनके लिए 5 मिनट भी 10 मिनट भी नहीं करते, आते हो टाइम हो गया पूरा चलना है, और सारे समय आपके लिए है। तो ये बेईमानीपन है। तो हम लोग को सब अगर थोड़े बहुत 5% ईमानदारी बनना है तो कम से कम इतने समझ बूझ करके कार्य कुछ करना चाहिए। जो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त बनो, मन मुझे दो, मुझे प्रणाम करो, मुझे पूजा करो, तो इस कार्य के लिए कुछ विचार सोच करके किया जाए तो इसलिए हमारा जीवन इस प्रकार से कार्य ना, हमारा जीवन सार्थक होगा। हम अपना जीवन भी सार्थक करेंगे तो उसे के लिए बताएंगे, वही परोपकार है, वो भी करें। तो जितने भी शास्त्र है, साधु संत है, सब इसी बात को कहते हैं कि इस प्रकार आपने को समझे कि हम कौन है, हमारे कौन है, ये दुनिया क्या है, ईश्वर क्या है, उनके साथ क्या नाता है, इसको समझ करके आपने जो लक्ष्य है उसके ओर बढ़ना चाहिए। हमको अभी तो पता नहीं लक्ष्य कुछ होता है क्या, हम जानते नहीं, अभी इसे पूछा क्यों जी रहे हैं, आई डोंट नो, ये जानते नहीं। आप कौन है, नहीं, यस मेरा नाम है, आईडी प्रूफ फोटो के साथ दिखा देंगे, अरे इधर ढक्कन के है आईडी तेरा नहीं, हम ऐसे हाथ उठाएंगे, बोले क्या है ये, बोलिए, नहीं मेरा हाथ ना, ऐसा बोलते ना, ये मेरा
हाथ है,
ये मेरा पैर है, ये मेरा सर है, ये मेरा छाती है, ये मेरा पेट है, ये मेरा आंख है, मेरा नाक है, मेरा कान, ये सब जितने पुर्जा पुर्जा शरीर में पूरा हाथ लग दे सब मेरा है, तो मैं कौन है? इस शरीर के अंदर मैं को ढूंढ कर निकालो, कौन है, कौन सा पार्ट में है बताओ, हाथ लगा के बता दीजिए, कर सकते हैं है ना? तो हुआ आर यू देन, आप फोटो दिखाए, आईडी मैं हूं सर, ये तू जिस फोटो दिखाए फोटो तो तेरा तेरा है, मैं तो नहीं, मेरा है, ये मेरा शरीर है, मेरा ढक्कन है, जैसे मेरा कुर्ता है ये भी मेरा ड्रेस है, तो तुम कौन, गलत आईडी क्यों दिखाया मुझे, तुम्हारा फोटो तो कोई खींच नहीं सकता, कोई खींचा ही नहीं, कोई इस ड्रेस का फोटो क्यों मुझे दिखा रहे, तो इस चीज को जानने के लिए प्रयास करना, और इसी के लिए मनुष्य शरीर और बुद्धि और समझ मिला है, अगर उसके सब नहीं लगाएंगे तो दिस सेकंड चांस भी खो जाएगा, फिर डरना पड़ेगा आपको, आपके पिताजी ने आपको 100 रुपया दिए, बोले बेटा जाओ देखो यहाँ ये दुकान में भगवद गीता यथारूप मिल रहा है, वो 110 रुपया हम दे रहे हैं, जाके लेकर आओ देखते हैं क्या है, तो अब साइकिल निकल करे 110 रुपया लेकर के निकले, गीता लाने के लिए, हाँ बोले क्या गीता पिता है पता नहीं, पिताजी बोल रहे चलो, तो 100 रुपया लेकर निकले, रास्ता में देखे कि नया सर्कस आया, कमला सर्कस, अब तो टाइम है जाकर ले आएंगे, उसमें क्या सर्कस देख लेते हैं, 100 क्या ना, अभी 100 शुरू होने वाला है, कितना टिकट ना, 40 रुपया है, टिकट ले लिए, 100 में बैठ गए, 3 घंटा 100 सर्कस देख लिए, 3 घंटा गया, अब बचा आपके पास कितना, 60 रुपये बचा, बोले अरे भूख लग रहा है, दोपहर हो गया तो कुछ खाना खा लेना चाहिए, एक प्लेट एक मील कितने में आता है अमृतसर में, 30-40 रुपये फिर एक मील खाली, अब बचा कितना, 20 रुपये बचा, अब जाएंगे 20 रुपये में तो मिलेगा नहीं पुस्तक, है ना, नहीं 20 रुपया लेकर गए और समय भी शाम हो चुका है, 20 रुपया लेकर गए मिला नहीं, अब वापस आएंगे, पिताजी अब किसे वेलकम करेंगे, है ना, नहीं ठीक है हमारा इधर साहब भगवान ने हमको 100 साल उम्र दे करके भेजे, बोले बेटे जाओ ये काम करके आओ, हम आकर के अपने मस्ती में खेल कूद में बिता दिए, कुछ बाला अवस्था क्रीड़ा सक्ता बालकपन तो खेल कूद में गया, और तरुणावस्था तरुणी रक्ता बचपन तो ऐसे मस्ती में गुजारे, आप 80 साल गुजार करके खा पी करके 20 साल की उम्र में जो कान नाक आंख कुछ काम नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, कोई कुछ बन नहीं रहा पिताजी, अब तो भगत बनना चाहता हूँ, अभी आपके काम करना चाहता हूँ, बेवकूफ गेट आउट फ्रॉम हियर, सारे बदमाश करके आया, जैसे ट्रीटमेंट होना चाहिए ऐसे ही होगा, है ना, नहीं तो इसलिए आप लोग सब सौभाग्यवान हैं, कम से कम जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि ये है क्या चीज, हम कौन है, किस लिए हैं, ये शास्त्र के द्वारा ही जाना जा सकता है, शास्त्र से चीज को जानना चाहेंगे और जान करके उनके अनुसार अगर कार्य करेंगे, वही वास्तविक हमारा बुद्धि का शरीर का उपयोग है, इसी से हम प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, हमारा कल्याण होगा, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसका है, बोलिए,
के बाद यमराज के पास जाते हैं, वर्णन आता है इसमें, तो पितृलोक और यमलोक एक ही है, पितृलोक क्या है, जैसे ये पितरों का तर्पण किया जाता है,
अच्छा।
तो
देखिए पिता एक पोस्ट है, क्या है पोस्ट है, व्यक्ति नहीं होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री एक व्यक्ति थोड़ी होते, ये पोस्ट है, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकता है और जितने दिन तक रहेगा रहेगा फिर वो चला जाएगा, पोस्ट कभी नहीं मिटता। व्यक्ति मर मिट जाए, हजारों में मर गए प्रधानमंत्री बनकर, लेकिन प्रधानमंत्री पोस्ट तो भी, राजा एक पोस्ट है, तो इसे पिता भी एक पोस्ट है। तो इस पोस्ट को जो कंट्रोल कर रहा है वो जो लोग जो डिपार्टमेंट है वो पितृलोक है, ऐसा समझो। तो उन डिपार्टमेंट के लिए हमारा कुछ कर्तव्य है, क्योंकि उन पोस्ट से आपको पितापन आता है, नहीं तो आप पिता बन नहीं सकते, वहां से संक्रमण होता है तो पिता बन सकते, देयर कंट्रोलिंग। तो उन लोग के लिए आप कुछ कर्तव्य है, तो वही पितृलोक है। ऐसा नहीं कि हम जो पिता बने हम सब वहीं जाते हैं, नहीं, हम तो नरक में जाते हैं, हमारा बुकिंग तो नरक में हुआ है, लेकिन पिता बने हैं तो इसलिए उनके लिए भी कुछ हमारा जमींदारी है कि उनका कुछ यूज भी किए हैं, उनका पुरुष काम कुछ यूज किए हैं, उनको किराया देना चाहिए। वो कुछ ज़्यादा नहीं मांगते हैं आपसे, वही ऑब्लिगेशन, थोड़ा पानी दे दो समय पर हमको, वहाँ से आप पानी देंगे उनको बहुत कुछ मिलेगा, वहाँ से थोड़ा तेल दे देंगे उनको बहुत कुछ बनेगा। मेरे पानी से उनको क्या पेट भर जाएगा, क्या पानी से होगा उनको, एक हाथ में अंजलि पानी दे देने से उनका काम बन जाएगा। अरे इतना ही तो बहुत चाहिए। कभी कभी हम मदद करना चाहे, कोई व्यक्ति आया, प्रभु जी मेरे बेटी का शादी है, कुछ नहीं मेरे पास, थोड़ा मदद करो, आपके पास बहुत पैसा है थोड़ा दे दो। चलो कोई बात नहीं, अरे आओ चेकबुक लाओ, ओ बस 50,000 रुपया चेक में लिखकर दे दिए उसको। आप तो छोटा सा पेपर दिए ना उसको, छोटा सा पेपर दिए साइन करके, लेकिन उनसे उनको क्या मिलेगा उसमें, चावल दाल सब्जी कपड़ा लता कुछ दुनिया भर का सामान मिलेगा। आप दिए उनके छोटा सा पेपर, उनके पास दुनिया सामान मिला, उससे ले आएगा। ठीक इसी प्रकार आप यहाँ से केवल एक तिलांजलि दीजिए, एक अंजलि जल दीजिए समय पर, उनके पास बहुत सारा सामान होकर मिलेगा उनको, तो ही देना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। और जहाँ जमराज की बात है, ये मृत्यु की देवता है, डेथ डिपार्टमेंट उनका हाथ में, मरवाना ये उनका काम है। और मरवाते तो सारे प्राणी को, लेकिन उनके पास जाते हैं केवल मनुष्य, और कोई जीव उनके 84 लाख जीव से केवल मनुष्य जो नहीं उनके पास जाएगा, क्योंकि कर्म जो नहीं वही है, कर्म के विचार वो करते हैं, तेरे कितना पाप किया पुण्य के इसके अनुसार तुझे दंड दूंगा। तो ये तो केवल मनुष्य पाप पुण्य करता है, बाकी के पास वही कर ही नहीं सकते, उनके पास होता ही नहीं पाप पुण्य करने का चांस, केवल मनुष्य ही पाप करता है पुण्य करता है, तो वो जाएगा जमराज के ऑफिस में। बाकी मरने का कब कैसे किस प्रकार मरेगा ये डिपार्टमेंट भी वो देखते हैं, दो डिपार्टमेंट जमराज देखते हैं, क्या क्या डेथ को कंट्रोल कर रहे हैं, कौन कब कैसे मरेगा प्रत्येक जीव के लिए, और मनुष्य के लिए उनका पूरा ब्यौरा देखते हैं, हिसाब उनका पूरा खतियान पड़ा हुआ है, आओ तू बदमाशी इतनी गलती किया है उसके लिए सजा है, इतने अच्छा के इसके लिए पुरस्कार है, मनुष्य के लिए करते हैं, बाकी सारे प्राणियों के लिए डेथ का व्यवस्था मृत्यु की व्यवस्था करते हैं वो करते हैं।
तो मनुष्य की जब डेथ होती है तब तुरंत यमराज के पास जाते हैं कि कुछ समय जैसे
तुरंत जाते हैं, यमराज ले जाते हैं तभी तो मृत्यु होता है, जब तक यमराज नहीं लेगा तो मरेंगे नहीं, सब वो आकर ले जाते हैं आपको, प्राण खींच कर आपसे गेट आउट, धक्का धक्का ले जाते हैं निकाल करके।
जैसे यहाँ लोग कहते हैं कि 13 दिन तक जो है आत्मा भटकती रहती है,
वो इसलिए करते हैं, उसका विधि ये है, क्योंकि हम इस शरीर रह करके इतने शरीर को अपना मान लिए, इतने आसक्ति कर लिए, हाय मेरा शरीर, जिसे अभी हम हैं, थोड़ा सा सर्दी हो रहा करके मफलर स्वेटर क्या क्या लगाते हैं, थोड़ा कोई जख्म हो जाता है कितने मालिश पट्टी करते हैं, मेडिसिन खाते हैं, कितने टेक केयर करते हैं इस बॉडी को, तो इस बॉडी को छोड़कर जाने के पसंद करेंगे हमने, बिल्कुल नहीं। ओह दिस इज माई बॉडी, माई मेरा शरीर, कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, बिल्कुल धड़धड़ खड़खड़ मरने लायक हो जाएंगे तब भी जाना नहीं चाहेंगे, कान को नहीं सुना पड़ेगा, आंख को नहीं देखेगा, दांत निकल जाएंगे, फिर भी अब छोड़कर जाना नहीं चाहेंगे, फिर डॉक्टर साहब मुझे और बचा दो, और मैं जीना चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। तो शरीर के प्रति इतनी आसक्ति छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो जमराज आकर के प्राण को निकल ले जाता है आत्मा को, लेकिन ये आत्मा फिर चांस में भक्त फिर आ जाता है, फिर आना चाहता है, उसमें रहना चाहता है। तो इसलिए ये व्यवस्था रखा गया है आसक्ति को काटने के लिए, कि सबसे प्रथम इस शरीर को जो आपका सबसे नियर एंड डियर हो, जो इस शरीर के साथ जो सबसे ज्यादा प्रेम स्नेह जिसको कर रहे थे, वो जाकर आपका मुख में आंग घुसाएगा। आप देखेंगे उसको, क्या ये मेरा बेटा, मैं इसको खिलाया पिलाया बढ़ाया, कितने स्नेह ममता किया, वो मेरे मुख में आग घुसाता है। लेकिन आप तो देख नहीं पाता, आप देखते हैं उनको, आप बोलते भी उनको ना, ये आपके बोली सुनेगा ना आपको देख पाएगा। आप शरीर से हट जाने के बाद आपको देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं सूक्ष्म शरीर में। बोलेंगे ये रे बेकार है जिंदगी, सब छोड़ के जाओ, फिर दिन फिर नहीं थोड़ा होगा, फिर जाना चाहिए, मेरा घर मेरा पत्नी है मेरा बेटा है, फिर वापस आते हैं। फिर क्या करते हैं, 13 दिन तो पहले वो दाढ़ी फाड़ी रखकर बस के जो बैल किया हुआ चीज बिना नमक वाले ये लेकर तुठ में से फेंक दिया, भूख लगाएगा, प्रेत कर्म जो करते हैं। बोले क्या मेरा हो करके मैं घर पर मुझे इसे देता है खाने के लिए, हट मैं नहीं जाऊँगा, छोड़ कर जाते। फिर लेकिन इसमें आसक्ति फिर लाएगा, तो जिसका जितना आसक्ति है इतना दिन तक क्रिया कर्म करना पड़ता है। ब्राह्मण के परिवार में कम से कम 11-12 दिन करना पड़ता है, क्षत्रिय वैश्य में थोड़ा 16-17 दिन तक, मुस्लिम लोग तो 40 दिन तक करते हैं, ज्यादा आसक्ति है ना, जो जितने डेथ आसक्ति डीप अटैचमेंट है इतने दिन तक उनको धोखा देंगे तब तो बोलेंगे नो दिस इज टू मच, वो नहीं आऊंगा। ये व्यवस्था
उस टाइम आत्मा को छोड़ के रखते हैं
जमराज, इतना देता है कि तू यहां से निकाल तो दिया, तू वहां से अटैचमेंट छोड़ दू तब हटाऊंगा। कष्ट तो देते हैं, डंडा मारते हैं उनको, लेकिन बोलते हैं मैं जाकर अभी आता हूं थोड़ा, जाओ वहां से धोखा करते जाते हैं। फिर उनको जब लेने का टाइम होता है, फिर तब गरुड़ पुराण में पढ़िए, जब रास्ता किस रास्ता पर किस प्रकार लेकर जाते हैं तो आपका शारीरिक विकार हो जाएगा उसको पढ़ेंगे तो। हाँ जी, करेक्ट,
लेकिन बच्चे कह सकते हैं कि ये तो दुनिया के सारे माता पिता करते हैं, अगर आपने हमें पैदा किया, जैसे भगवान ने पैदा किया तो ड्यूटी बनती थी कि हमें सूरज प्रवाहित करें या जो भी करें, तो इसमें आके मतलब कि बार बार पूजा क्यों करें, आप आपकी बार बार सेवा किस किस लिए करें।
तो लेकिन जो आपको लाइट पानी जो आपको किया उसके लिए तो करना चाहिए ना, है ना, कर रहे हैं क्या, वही तो मैं कह रहा हूँ। जैसे माता पिता ने इस शरीर को जन्म दिए हैं, इस शरीर को पालें और पोसें, है ना, नहीं अगर जिससे आप छोटे बच्चे थे 1 महीना का थे, अगर आपको टाइम पर खिलाते नहीं पिलाते नहीं तेल मालिश नहीं करते वो नहीं करते, आप आज इसे बड़े बन सकते क्या, नहीं, तो आपका उनके प्रति बहुत ही ऋण है, चुका भी नहीं पाएंगे उसको। भगवान कृष्ण ने 10वां स्कंद भागवत में वसुदेव देव के कंस बद्ध के पास जाकर कहते हैं, कहले हे माता हे पिता, ये तो निश्चित है कोई पुत्र को जो माता पिता जन्म देते हैं शरीर को, उनका इतना दायित्व है अगर 100 जन्म लेकर के उनको पूर्ण तभी नहीं कर सकता पूरा उन्होंने, और अगर कोई शक्ति सामर्थ्य होते हुए माता पिता का सेवा नहीं किया तो आपने मानस को खुद खाएगा वो। भागवत में देखिए बात लिखा गया, आपने मानसव काट कर आप खाना जिस प्रकार ऐसा है अगर माता पिता की सेवा नहीं किया। जब इस शरीर के पाल पोषण के कारण इतने हमारा उत्तरदायित्व बनता है, इतने सेवा करना होता है, जो ये शरीर मान बुद्धि सारे संसार को पाल पोषण है, जो असली मार परम पिता है उनके प्रति कितने कर्तव्य बोध होना चाहिए, कितने ऋण होना चाहिए, है ना। जानते वैराग्य किसको कहते हैं, निराशा हो जाना, आसक्ति ना होना, राग ना होना, राग ना होना, तो वो बहुत अच्छा चीज है। लेकिन युक्त तो वैराग्य है उसका मतलब है कि संपत्ति से अटैचमेंट ना रखना, ये तो सही हो आपका नहीं है, लेकिन किसका तो है, किसका है जानना, किसका है, मेरा तो नहीं है, लेकिन किसका है, है ना? नहीं, जिसका है उसको जानो और उसको दो भाई उनका सामान। जैसे आप रास्ते में जाते हैं, 500 रुपये का नोट गिरा मिला, तो क्या करेंगे अपने? नहीं तो वैराग्य में नहीं उठाऊंगा उसको, मेरा क्या मेरा मतलब नहीं। समल उष्ट्रस में कांचन, सोना है पत्थर है समान है, मैं तो कोई राग नहीं, मैं तो छूंगा नहीं उसको, तो बेवकूफ़ी है। भगवान ने बुद्धि दी है किस लिए दी है? तो पशु होता तो नहीं छूता, अब तो पशु नहीं है ना, मनुष्य है। तो इसी वैराग्य करना आपके लिए शोभा नहीं देता, आप उसको लीजिए, लेकिन आपका नहीं है, पता लगाइए किसका है। जिसका अगर हो गया पता मिल गया उसको दीजिए, अगर पता नहीं कर पाए तो असली में जो संपूर्ण होलसेल मालिक है ठाकुर जी, उनको हुंडी में लेकर डाल दीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, वो अपने परम वैराग्य अगर नहीं लाए, तो आपके ये गलती है, आपको इसलिए दंड मिलेगा। इसी कहते हैं युक्त वैराग्य। वैराग्य करना सही है, लेकिन जिसका समन है उनकी यूज उन पर करना, ये युक्त है, वैराग्य से युक्त है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शुष्क वैराग्य होगा, सूखा है। नहीं, आप दोनों ही सही थे। आपको कौन बताए कि युक्त वैरागी शुष्क वैरागी? ये ऋषि थे वो राजा थे, यही अंतर था। युक्त वैरागी शुष्क वैरागी कौन बताए ये बात? दोनों ही युक्त वैरागी थे, दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज दोनों ही युक्त वैरागी थे, सुख वैराग्य नहीं है ना। शुष्क वैराग्य होता है हम नहीं छूंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। तो उसमें युक्त वैराग्य शुष्क वैराग्य क्या मतलब आया? हो तो आपने गुस्सा आया, अपमान फील की, इसमें युक्त वैराग्य शुष्क वैराग्य क्या बात है भाई? मैं अतिथि हूँ, ब्राह्मण हूँ, ऋषि हूँ, मुझे बुलाया था घर में खाने के लिए, मैं खाने से पहले तू खा लिया, इसलिए उनको गुस्सा आया, इसमें युक्त वैराग्य शुष्क वैराग्य क्या बात है ना? और कुछ
आपने जैसे बताया कि स्त्रियों को पति की आज्ञा से व्रत रखना चाहिए
जी,
तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है जहाँ जो उनके पति हैं, हस्बैंड हैं, वो कोई कृष्णा कॉन्शियस नहीं है या इतना कोई पालन नहीं करते हैं, ऐसी कंडीशन में भी आज्ञा पालन करनी होती है या?
देखिए धर्म तो ही है कि हमारे शास्त्र कहता है कि पत्नी अर्धांगिनी होते हैं, उनके हाफ अंग होते हैं। अब जिस समय उनका ये संपर्क हुआ उसी समय उन्हें देख लेना चाहिए कि मेरा नेचर उनका नेचर मैच करता है कि नहीं। मैं एक डिवोटी हूँ, मैं निरामिष भोजन करता हूँ, ये आमिष भोजन करते हैं, तो कहे को अपने पति को स्वीकार किया, स्वीकार करके फिर उनका मान नहीं सकता, सेवा कर ही नहीं सकता, तो कहे को किया कि मैं सब मोल मान लिया, मोल लिया आपने, गलती तो पहले किया आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपके स्वभाव के अनुरूप ही होना चाहिए था। चलो आपको पता नहीं, पिताजी माताजी करवा दिए, आपके भाग्य में जो भाग्य में जो है उनको ही मानो, जो पति के रूप में मिला उनको मानना ही धर्म है, पतिव्रता का यही धर्म है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आप भगवान के भजन करना भक्ति करना चाहते हैं वो नहीं करने देते हैं, तो ये फिर नियम थोड़ा गड़बड़ होगा, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि पिता नहीं मैं सबके पति भी हूं, होलसेल रूप में पति भगवान ही है। पतिर गति सांधक पुरुष निसत्वतांग, सभी के पति भगवान है, अकेले पति है, बाकी सब पत्नी है, दुनिया के सारे जितने सब पत्नी, अकेले पति भगवान पुरुष वही है। तो उन पति के लिए ये डुप्लीकेट पति अगर मना करे तो उसको कौन पूछे? कभी कभी इसे भागवत में गोपी लोग कैसा कहे, जब भगवान के प्रश्न किए, बोले कि देखो प्रभु एक हमारा बात ना, क्या बात ना, हमारे पति शादी के पति गए विदेश, कोई काम गए हैं 6 महीना छुट्टी में, तो 6 महीना तक मैं पतिव्रता हूँ, पति जब तक घर में नहीं है, मैं कभी आपने कुछ सजाए नहीं, श्रृंगार भी नहीं की, कभी मैंने इतर तेल साबुन नहीं लगाया, और पति के फोटो रखा मैंने, पति के फोटो बड़ा रख करके प्रतिदिन सुबह शाम उनको आरती भी करता हूँ, प्रणाम करती हूँ, उनको भोग निवेदन करके मैं खाती हूँ, मेरे पति बता, मैं ऐसे करती हूँ डेली। अब 6 महीने के बाद पति वापस आ गए, लेकिन आप फोन था नहीं, तभी चिट्ठी विट्ठी नहीं लेके फोन नहीं किया, आ गए, आपको परमिशन न लाकर आ गए, परमिशन लेना उनको उचित भी नहीं, ना भी नहीं नहीं था चाहिए, तो आए, आके दरवाजा नॉक करते हैं, दरवाजा खोलो, और आप अपने पति के पास बैठ करके, जो फोटो वाला पति के पास बैठ करके उनके भोग लगाते हैं कि उनको सफाई करते हैं, आरती करते हैं, और स्वयं पति जो है जिसका फोटो को आप कर रहे हैं, वो आकर बोल रहे हैं कि भाई मैं आया हूँ, दरवाजा खोलो, मैं थोड़ा पानी अगर दो पीने के लिए, आप बोलते नहीं, मैं अभी पतिव्रता हूँ, मैं फोटो छुपा करूँ, आपको को नहीं, तो कैसा है, अच्छा है क्या, ठीक नहीं ना, तुरंत उसको फोटो फोटो फेंक करके जाना चाहता है, अरे भाई जिसके फोटो मैंने कर रहा हूँ तो असली जो खुद आया है, फिर ये क्या है, ये ढक्कन फोटो क्या करना है। तो इसलिए जहां तक भगवान के साथ संबंध प्रेम और भक्ति की कामना आया, फिर तो असली पति तो वही है, ये सब नकली है, फोटो है, सब कोई फोटो अच्छा भी नहीं, बेकार है। फोटो खींचते समय क्या होता ना, आप बहुत सारे सेविंग टेविंग करके और मेकअप फेकअप करके बहुत श्रृंगार करके जा करके स्टूडियो में बैठे, कैमरामैन बोला ठीक है थोड़ा इस साइड, थोड़ा ऊपर, थोड़ा राइट बाएं, सब सेटिंग करते करते बस 1 2 3 थोड़ा हंसते रहना, हाँ थोड़ा दांत दिखाना, मैं फोटो खींचता हूँ 1 2 3 आपको भगवान जाने, उसी समय छींक छींक जानते ना, ठीक है छींक आया 1 2 3 वो क्लिक कर दिया, अब फोटो आया, बोला क्या कर दिया यार फोटो बेकार आ गया, अरे मैं क्या करूँ, मैं तो फोटो खींचा तू, अब पूरी तैयारी किया था, लास्ट मोमेंट में ऐसे फोटो विकृत हो गया, छींक से मुंह कैसा हो जाता, फोटो उठाया अपने इस समय, फोटो उठा कर देखो कितने दिखाई पड़ता है, घासली फोटो दिखेगा, तो इसी कहते अंत काल चमाम, अंतिम समय कैसा होगा क्या पता, फोटो तो इससे उठ जाता है, वही पिक्चर आ जाए, बाकी तैयारी तो पूरा सब साल जिंदगी किया, लास्ट में किस क्या फोटो आएगा उस समय पता चल जाएगा। हाँ जी, हाथ जोड़ देना चाहिए, प्रभु जी गलती हो गया, मैं आपको नहीं दूंगा, मैं पता नहीं था आप ऐसे महान व्यक्ति है, क्या वो गीता पसंद नहीं है, माफ करना मुझे, मेरा गलती, चला जाना चाहिए, है ना। हाँ, भगवद गीता देखने से आप अपवित्र हो जाते हैं, आपको करंट लगता है, मुझे पता नहीं था, है ना, ऐसे बोल के चलो।
तो
कैसे बनेगा,
तो वो बोलते
तो हम लक्ष्मी ना, आप ऐसा करो 50 गीता का पैसा मुझे दे दो, फ्री मान दूंगा, मैं लेना नहीं चाहता हूँ लक्ष्मी, मुझे अच्छा नहीं लगता मांगने के लिए, लेकिन उसका
भगवान पे निर्धारित हो, आप भगवान पे निर्धारित हो तो आप हमसे क्यों मांगते हो, भगवान से डबल मांग उल्टा आपने बांटना चाहिए,
नहीं भगवान बोले ना आपसे लेने के लिए, बोले ये आपका पास धन रखा, ये आपका है क्या ना, भगवान के है ना, ये भगवान के, तो भगवान किसी भगवान को दे दो, आपका क्या पड़ी है,
बोलते हमको हमारी गृहस्थी चलानी होती है, ये तकलीफ होती है, ये अपने बहाने बनाते
हैं, तो बहाने के तो बहाने तो बनाने, जो बहाने बनाएंगे, 100 रुपया देने से किसका गृहस्थी रुक नहीं जाता, अगर किसका पास श्रद्धा नहीं है लेने का तो उनके पीछे टाइम नहीं खरना चाहिए, खराब करना नहीं चाहिए, प्रचारक के लिए केवल एक ही काम होता है, वो जाके लोगों के पीछे पढ़ करके देना देना जरूरी नहीं, वो ढूंढे किसके अंदर थोड़ा श्रद्धा है, वो अपने आप बोला कि मुझे ठीक है 100 रुपया दो, और भी 500 रुपया लेके जाओ चाय पानी के लिए, वो समझते हैं इस बात, हम उन्हीं के पास जाना चाहिए। ये इसे बदमाश श्रद्धालुओं के पास जाकर टाइम खराब नहीं करना चाहिए। एक मिनट देखे तुरंत भागो यहां से, डोंट वेस्ट टाइम विद देम। लेकिन श्रद्धालु हैं उनको हम ढूंढना चाहिए। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी।
पर महाराज लोगों में श्रद्धा क्रिएट करना भी तो जरूरी है ना?
आप क्रिएट करेंगे जिनका जो श्रद्धा है वो, जब आपको क्रिएट करना काम नहीं है, जो श्रद्धालु हैं उनको ही आप ट्रीटमेंट करो। क्रिएट करने का पावर आपके अंदर नहीं है ना।
महाराज की जय।